नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मैं 42 साल की हूँ और दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों ही नैनीताल में पढ़ते हैं और वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति की मौत को 6 साल बीत चुके हैं। मेरे पति का एक बिज़नेस था जिसे अब मेरा भाई देखता है। दोस्तों, पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया। लेकिन मेरे शरीर की भूख दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। पहले शायद बच्चों की देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी अपने अकेलेपन पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से पति के मरने के 6 साल बाद तक मैंने कभी सेक्स ही नहीं किया। फिर वो दिन आया जब मुझे सेक्स मिला, और ऐसा सेक्स जो शायद ज़िंदगी में कभी ना मिला। बात सर्दियों की है। मेरी ननद जो बैंगलोर में रहती हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया। उसने बातों ही बातों में मुझे बताया कि उनके पति सागर को दिल्ली आना है किसी काम से, तो वो 2 दिन मेरे यहाँ रहेंगे। सागर का बैंगलोर में अपना जिम है और वहाँ दिल्ली में एक जिम खोलना चाहता है। इस कारण कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। मेरी ननंद मेरे पति से छोटी है और सागर की उम्र 36 साल की है। एक हफ्ते बाद वो दिन भी आ गया जब सागर को दिल्ली जाना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद सागर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो शाम को घर आएगा। अभी वो एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है। मैंने भी अपने ड्राइवर को कहा कि पूरा दिन सागर के साथ ही रहे ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो। सागर शाम को 6 बजे के आसपास घर वापस आया। जैसे ही गाड़ी से उतरा, मैं तो उसे देखती रह गई। देखा तो मैंने उसे बहुत बार था, पर शायद इस बार नज़र कुछ दूसरी थी। वो 6 फिट लंबा भरा हुआ शरीर, जो भी लड़की उसे देख ले अपनी चोट को खुजाए बिना नहीं रहेगी। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था, लेकिन उस वक्त अपने ऊपर कंट्रोल किया। फिर सागर मेरे पास आया, मुझे नमस्ते करी और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगा के एक दूसरे का स्वागत किया। मैंने सागर को आते ही नाश्ता करवाया, फिर उसे कहा कि वो फ्रेश हो जाए। करीब आधे घंटे बाद सागर कमरे से बाहर आया तो वो शॉर्ट्स में था। उसकी छाती बनियान फाड़ के बाहर आ रही थी, बाजुएं फूली हुई, टांगे भी बिल्कुल शेप में। ऐसी बॉडी वाले बंदे बहुत कम मिलते हैं। दोस्तों, आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और बातें करी एक दूसरे से। उसने बताया कि कैसे उसकी मीटिंग सक्सेसफुल थी और कल भी उसे वहीं जाना है। मैंने अपनी ननंद रूही की खबर ली। हम दोनों 4 साल बाद मिल रहे थे, तो बातों ही बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने नौकर को बोल के डिनर लगवाया, फिर हम दोनों ने डिनर किया। डिनर के बाद सागर अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 10 बजे नौकर भी चले गए। अब घर में सागर और मैं अकेले थे। मुझे लगा सागर थका हुआ होगा तो सो गया होगा। मैंने अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर नाइटी पहनी, फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। अपने बूब्स को अपने हाथों से दबाकर देखने लगी, जिनका साइज 38 था। घांट भी कम नहीं थी मेरी, 44 का साइज था और बाहर निकला हुआ जूतड़। अपने शरीर को निहार ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सागर था। जैसे ही सागर ने मुझे देखा तो मैंने उसकी आंखों में एक अलग चमक महसूस की। शायद वो मेरे बदन को नाइटी में देख के निशब्द रह गया हो। फिर कुछ देर बाद बोला, माफ़ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठकर बातें कर लूं। पर अगर आप सोना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे। मैंने कहा, अरे नहीं सागर, मैं तो बस ऐसे रूम में आ गई थी, चलो बाहर बालकनी में बैठकर बातें करते हैं। सागर से मैंने वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी। मैंने वाइन दो ग्लासेस में डाला और बाहर बालकनी में बैठ गए। हम दोनों की कुर्सी बराबर में थी। भाभी, आपको देख के हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। घर, बच्चे, कारोबार, मैं और रूही हमेशा आपको देख के गर्व महसूस करते हैं। सागर, यही ज़िंदगी है। किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। अपने आप को खुद संभालो और आगे बढ़ जाओ। वैसे तुम और रूही वहाँ बैंगलोर में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर सागर खामोश हो गया। क्या हुआ सागर, खामोश क्यों हो गए? क्या तुम लोग खुश नहीं हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूँगी। आखिर शिवम की मौत के बाद तुम दोनों मेरी ही तो जिम्मेदारी हो। सागर वाइन पीते हुए बोला, भाभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोही बहुत खुश है वहाँ। अब तो हमारा बेटा अभिनव भी है, जिसने खुशियाँ दुगनी कर दी। और तुम, क्या तुम खुश हो? पता नहीं भाभी, अभिनव के जन्म के बाद रूही बदल गई है। वो प्यार जो मुझे चाहिए वो मुझे उससे नहीं मिल पाता। हमेशा घर के काम, बच्चों की देखभाल, शायद अब यही उसकी लाइफ है। जो रूही का प्यार था मेरे लिए, अब वो कहीं खो गया। मैं समझ गई थी सागर की तकलीफ को। शायद ये भी उन मर्दों की ज़िंदगी जी रहा है जो अपनी वाइफ के साथ रहते तो हैं पर प्यार और ज़रूरत के लिए बाहर का सहारा ढूंढते हैं। मैंने कहा, सागर मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना ज़िंदगी कैसे अधूरी होती है। मैं यही ज़िंदगी तो जी रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसी ज़िंदगी जियो, इसलिए मैं रूही से बात करूँगी। नहीं भाभी प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना उसे लगेगा मैंने आपसे उसकी बुराई की। आपने सही कहा, शायद यही लाइफ है। वैसे भाभी, आप कई सालों से अकेली हो, क्या आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जीना चाहिए? प्यार तो आपको भी चाहिए। अब चुप रहने की बारी मेरी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, सागर कमी तो बहुत महसूस होती है। 6 साल से अधूरी ज़िंदगी जी रही हूँ, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी अकेली हूँ। भाभी, अगर बुरा ना माने तो पूछूं, भैया के जाने के बाद आपने किसी के साथ सेक्स नहीं किया? नहीं सागर, समाज और जिम्मेदारी के डर से कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। क्या आपका मन नहीं करता? आपको भी तो पूरा हक है खुश रहने का, और अपनी ज़रूरत को पूरा करने में डर कैसा? इस बात के बाद हम दोनों के बीच खामोशी पसर गई। मैं कुछ नहीं बोली। करीब 1 मिनट बाद मैंने अपने एक हाथ के ऊपर सागर का हाथ महसूस किया। मैंने रिएक्ट नहीं किया। फिर अचानक से सागर ने मेरे हाथ को पकड़ा। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मुझे मेरी ननद का ख्याल आ गया और मैंने हाथ को छुड़ा के वहाँ से उठ गई और अपने कमरे में आकर कुंडी लगा ली। दोस्तों, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मैं पलंग पर लेट गई और अपने हाथ को अपनी चूत पर रख दिया। बहुत शांति मिली अपनी चूत सहलाते हुए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई कि ये सागर ही है, लेकिन कुछ झिझक के बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा, माफ़ करना भाभी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पता नहीं कैसे मैंने ये सब कर दिया, आप मुझे माफ़ कर दो। वो बोल ही रहा था कि मैंने अचानक से उसके होठों को चूम लिया। शायद मेरे इस अचानक चुंबन से वो हैरान था, लेकिन कुछ पल बाद वो मुझे चूमने लगा। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे बहुत दिन से प्यासे हों। चूमते चूमते वो मुझे बिस्तर पर ले आया, बेड पर पटक कर मेरे ऊपर आ गया, जोर जोर से मेरे होठों को चूमने लगा। दोस्तों, आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी, कभी मेरी जीभ उसके मुंह में, कभी उसकी मेरे मुंह में। ऐसे करीब 5 मिनट तक चला। फिर सागर ने अपना हाथ मेरे जुट्टे पर रखा और उसे दबाने लगा। फिर वो उठा और मेरी नाइटी को निकाल दी। अब मैं बस ब्रा और पैंटी में उसके सामने लेटी थी। मेरे शरीर को देखता ही रह गया और बोला, भाभी सच में आप कयामत हो, ऐसा शरीर तो आज तक नहीं देखा। आपके चुच्चे आपकी ब्रा को फाड़ के बाहर आ रहे हैं। और ये बोलते ही उसने अपना मुंह मेरे चुच्चों के बीच में रख दिया और सूंघने लगा मेरे बूब्स की खुशबू को। फिर उसने मेरी ब्रा को अलग कर मेरे दोनों चुच्चों को रिहा कर दिया। मेरे मलाई जैसे चुच्चे अपने हाथों से दबाने लगा। सागर खा जाओ अपनी भाभी के चुच्चों को, बहुत दिन से तड़प रहे हैं ये एक मर्द के लिए। दोस्तों, मेरी सेक्स विद सिस्टर इन लॉ की कहानी आपको कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर।